हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सुनैना को ढूंढते हुए अपने कमरे से बाहर निकलकर आदित्य अपने स्टडी रूम की तरफ आया, और स्टडी रूम का दरवाज़ा उसकी उम्मीद के मुताबिक खुला ही हुआ था। तो उसने दरवाज़ा अंदर की तरफ करके पूरा खोला और कमरे में आया तो उसे वहां पर बैठकर पढ़ती हुई सुनैना नजर आई, और पढ़ते पढ़ते वो मुंह पर हाथ रखकर जम्हाई भी ले रही थी। शायद वो काफी देर से ही वहां पर बैठकर पढ़ रही थी। सोना, तुम यहां क्या कर रही हो और मैं तुम्हें इतनी देर से कमरे में पूरे घर में ढूंढ रहा हूं? आदित्य ने उसकी तरफ आते हुए पूछा तो उसकी बात सुनकर सुनैना ने तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर वापस से अपने सामने रखी किताब में ही नजरें कर ली। सुनैना का ऐसा रिएक्शन देखकर आदित्य ने जीभ अपने दांत से काटते हुए अपनी एक आंख बंद की और खुद से बोला, ओ गॉड, लगता है नाराज है, तैयार हो जा आदित्य बेटा। इतना बोलते हुए आदित्य बहुत ही धीरे धीरे चलता हुआ एकदम दबे पांव उसके करीब आया और चुपचाप जाकर सुनैना के पीछे खड़ा हो गया। वो चेयर पर बैठी हुई थी तो आदित्य ने पीछे से ही अपने हाथ उसकी गर्दन में डाले और अपना सिर उसके कंधे पर रखते हुए बोला, मेरी याद आ रही थी तो फोन कर लेती, इस तरह से यहां स्टडी रूम में आकर मेरे यहां होने के एहसास को महसूस कर रही थी क्या? धीरे से सुनैना के कान के पीछे किस कर लिया, और वो सुनैना का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, तो सुनैना ने तुरंत ही अपनी गर्दन एक साइड में की और बोली, आह क्या कर रहे हो आदि, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ना कुछ ज्यादा ही चीजें फैंटेसीज करने लगे हो, हटो और पढ़ने दो मुझे। इतना बोलकर सुनैना ने अपना चेहरा थोड़ा सा आगे किया और किताब उठाकर अपनी आंखों के एकदम नजदीक कर ली। फिलहाल वो बस आदित्य को इग्नोर कर रही है क्योंकि वो इतनी देर के बाद यहां पर आया है, और ये बात आदित्य को भी समझ आ रही है। बहुत हो गई पढ़ाई, इतनी देर से पढ़ रही हो, थोड़ा सा तो ब्रेक ले लो। आदित्य अपनी जगह से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और उसी तरह से उसके नजदीक आता हुआ आदित्य अपने होठों को उसकी गर्दन के करीब ले गया और पीछे से ही उसकी गर्दन पर किस करने लगा। आ, सुनैना के मुंह से ना चाहते हुए भी ऐसी आवाज निकली और उसकी आंखें भी अपने आप ही बंद हो गईं और उसके हाथ से किताब छूटकर वहीं पर गिर गई। वो कुछ बोल नहीं पाई और तुरंत ही पीछे मुड़कर आदित्य के गले से लग गई। तो फिर आदित्य ने भी उसे कुर्सी से उठाते हुए अपनी बाहों में भर लिया और उसे उसी तरह से लेकर वहां कुर्सी के पीछे रखे हुए काउच पर बैठ गया। आदित्य काउच पर बैठा हुआ है और सुनैना उसकी गोद में। आदित्य के हाथ सुनैना की कमर पर और पीठ पर हैं। अपनी बाहों के घेरे को और ज्यादा कसते हुए आदित्य ने सुनैना को अपने और करीब कर लिया और फिर धीरे से बोला, सॉरी, मुझे आने में थोड़ा सा देर हो गई, लेकिन मैं वहां हॉस्पिटल से ऑफिस चला गया था। सुनैना अभी भी आदित्य से नाराज है, या फिर अब सिर्फ नाराज होने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन वो इतनी जल्दी ये नहीं दिखाना चाहती कि उसका गुस्सा गायब हो गया है, इसलिए उसने नजर उठाकर आदित्य की तरफ देखा और गुस्से से पाउट बनाते हुए बोली, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो और हर बार तुम्हारे सॉरी से काम नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन किस करने से तो काम बन जाता है ना। इतना बोलते हुए आदित्य ने मुस्कुराकर हल्के से उसके पाउट पर किस कर लिया तो सुनैना ने उसके चेस्ट पर हल्के से मारा और कहा, नहीं, इससे भी काम नहीं बनेगा, पहले तुम बताओ मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी क्यों नहीं समझते हो तुम, मुझे बोल कर गए थे बस अभी वापस आता हूँ, और फिर देखो शाम हो गई, तुम्हें एक बार भी मेरा ध्यान नहीं आया ना। ये बात बोलते हुए सुनैना की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी ये सोचकर कि क्या सच में आदित्य को उसका ध्यान नहीं रहता और इसलिए उसने उसे कॉल करके नहीं बताया कि वो कितनी देर में आएगा, जबकि सुनैना कब से ही उसका इंतजार कर रही थी और उसके इंतजार में उसने अकेले लंच भी नहीं किया। और जैसा आदित्य ने कहा था, सच में स्टडी रूम में ही उसे आदित्य के अपने आसपास होने का एहसास हमेशा ही होता है, इसलिए वो अपने कमरे से उठकर अपनी किताबें लेकर यहाँ पर चली आई थी और यहाँ पर ही बैठकर पढ़ने लगी, और साथ ही वो आदित्य से नाराज भी थी इसलिए उसने आदित्य को खुद से कॉल नहीं किया। सुनैना को ऐसे इमोशनल देखकर उसके ताल पर अपना हाथ रखते हुए आदित्य बोला, सॉरी सॉरी सोना, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ध्यान भला मुझे कैसे नहीं रहेगा, तुम तो हमेशा ही मेरे दिल दिमाग जिंदगी में हर जगह पर ही रहती हो, बल्कि तुम ही तो मेरी जिंदगी हो, तो मैं तो सोच भी कैसे सकता हूँ। वो अभी भी उसकी गोद में बैठी है लेकिन अब उस तरह से उसके गले नहीं लगी हुई है, बल्कि उन दोनों का चेहरा एकदम आमने सामने है। आदित्य की ये बात सुनकर ना चाहते हुए सुनैना के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसे मुस्कुराते देख आदित्य भी खुश हो गया। सुनैना ने भी उसकी, हाँ बस बातें करवा लो, ऐसे ही बातें बना बनाकर तो फंसाया है तुमने मुझे अपने साथ, और मैं भी फंस गई हूँ हमेशा के लिए, और उसने कहा, अच्छा तो अब नाराजगी दूर हुई या फिर कुछ और भी करना पड़ेगा? इतना बोलते हुए आदित्य अपना चेहरा सुनैना के चेहरे के एकदम ही नजदीक लाने लगा और वो काफी ज्यादा रोमांटिक मूड में लग रहा है क्योंकि उसे पता है इस तरह से सुनैना की नाराजगी ज्यादा देर नहीं रह पाती और उसे तो हमेशा ही सुनैना पर प्यार आता है। आगे आते हुए उसने सुनैना के गाल पर किस किया लेकिन सुनैना ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, वो उसकी बात सुनकर शायद कुछ सोच रही है। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, अभी कितना टाइम हुआ है, देखो 7 बजे हैं, चलो हम अक्षत सर और नैना दी के घर चलते हैं, वो न्यूज जो आई थी उस बारे में पूछने के लिए, सुनैना ने एकदम से ही कहा। तो आदित्य अपनी जगह से पीछे हो गया और उसकी तरफ देखकर थोड़ा चौंकते हुए बोला, क्या अक्षत कपूर के घर, वो भी इस वक्त और बिना इन्विटेशन के? मुझे नहीं लगता हमें वहाँ अंदर भी जाने देंगे। अरे जाने देंगे बिल्कुल, क्यों नहीं। और भूला मत करो कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज के तुम भी मालिक हो, तो कौन रोकेगा भला तुम्हें। सुनैना ने उसकी शर्ट के बटन के राउंड राउंड अपनी उंगली घुमाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा। उसके इस बात पर आदित्य तुरंत ही बोला, मालिक नहीं, मैं तो बस वहां पर काम करता हूं, क्योंकि मालकिन तो कोई और ही है। और रही बात अक्षत के घर जाने की, वो इतना जरूरी है क्या? कहीं और नहीं मिल सकती क्या हम उनसे? यहाँ पर ही बुला लो उन्हें, या फिर कॉल। हाँ कॉल पर बात कर लो ना। सुनैना ने एकदम से उठकर उसके सामने खड़े होते हुए कहा, नहीं, अभी तुमने पूछा ना कि मेरी नाराजगी दूर करने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा, तो बस ये वही है। और कॉल में इतनी बार कर चुकी हूँ, लेकिन कॉल पर बात ही नहीं हो पाई मेरी। एक बार नैना दी ने रिसीव भी किया था, तो बस एक मिनट बात करके ही डिस्कनेक्ट कर दिया, मैं उनसे कुछ पूछ भी नहीं पाई। अच्छा ठीक है चलो, लेकिन रेडी होने में ज्यादा टाइम मत लगाना, नहीं तो फिर और लेट हो जाएगा। सुनैना की जिद के आगे आखिर आदित्य भी हार मानते हुए बोला, मैं कभी भी ज्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, तुम बस 10 मिनट रुको, या फिर इतनी देर में तुम भी जाकर रेडी हो जाओ, तो और टाइम बच जाएगा। इतना बोलते हुए सुनैना ने वहां सामने मेज पर पड़ी हुई अपनी किताबें समेटने लगी, तो आदित्य ने किताबों की तरफ देखकर कहा, अरे लेकिन कल तुम्हारा एग्जाम भी तो है, हम उसके बाद चलते हैं ना।
फिर से एक और बहाना, कम ऑन आदित्य, कितने बहाने बनोगे तुम? सिर्फ उनके घर तक ही तो जाना है, मैं कौन सा तुम्हें पार्टी या फंक्शन में लेकर जा रही हूँ जो तुम इतना कतरा रहे हो? सुनैना ने फिर से गुस्से में मुंह फुलाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो आदित्य एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अरे नहीं, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा था, मैं सच में तुम्हारे एग्जाम के लिए ही बोल रहा था, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, मैं वैसे भी अक्षत और नैना के साथ कंफर्टेबल हूँ, और अक्षत से मुझे माफ़ी भी मांगनी है, मैंने उसे इतना गलत समझा और उसे कितना कुछ सुना दिया था, लेकिन फिर भी उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो सच में बहुत अच्छा इंसान है और नैना के लिए एकदम परफेक्ट भी। आदित्य की ये सारी बातें सुनकर सुनैना ने कहा, हाँ मुझे पता है, आखिर मेरे फेवरेट हैं अक्षत सर, अच्छे कैसे नहीं होंगे। और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो मैं सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है और पूरा कोर्स कंप्लीट भी कर लिया है, क्योंकि तुम थे नहीं दिन भर, तो काफ़ी टाइम मिल गया था और मैंने गुस्से में सब कुछ पढ़ डाला। सुनैना थोड़ा ऑकवर्डली स्माइल करते हुए बोली, तो उसकी बात सुनकर आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों ही रेडी होने के लिए निकल गए। फिर जब वो दोनों रेडी होकर अपने रूम से बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि अब स्वीटी वहां पर अकेली ही बैठी थी और उसके दोस्त शायद वहां से वापस जा चुके थे। आदित्य सुनैना ने स्वीटी को बताया कि वो दोनों नैना से मिलने के लिए जा रहे हैं और स्वीटी घर पर अकेली है, तो आदित्य ने वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी और फिर वो दोनों साथ में ही अपनी कार से वहां से निकल गए। लेकिन कार के साथ ड्राइवर भी है और आदित्य सुनैना दोनों बैक सीट पर एक साथ ही बैठे हुए हैं। कार अभी घर से थोड़ी दूर ही आ पाई थी, तभी सुनैना को एकदम से कुछ याद आया और वो अपने सिर पर हाथ मारती हुई बोली, आदि निकलने से पहले हमने तो उन्हें एक बार कॉल और मैसेज कुछ भी नहीं किया, अगर वो दोनों घर पर ना मिले तो? अरे तो ये तुम्हें घर पर बताना चाहिए था ना, और क्या मतलब घर पर नहीं मिलेंगे तो, और कहाँ होंगे, दोनों में से कोई तो मिलना ही चाहिए घर पर। उसकी बात सुनकर आदित्य बोला, तो सुनैना ने कहा, नहीं कोई ठीक नहीं है, दोनों ही शूट पर जाते हैं और नैना दी बोल रही थी कि उनकी शिफ्ट का कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता, और फिर जो मीडिया में उन दोनों के नाम को लेकर न्यूज़ चल रही है, शायद उसकी वजह से भी हो सकता है कहीं और गए हों वो दोनों। आदित्य ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे तो अब मुझे क्या समझ रही हो ये सब, अभी भी हम ज़्यादा दूर तो नहीं आए हैं, तुम कॉल कर लो तो पता चल जाएगा, या फिर कम से कम मैसेज करके बोल दो कि हम दोनों उनके घर आ रहे हैं। आदित्य की बात सुनकर सुनैना ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और नैना का नंबर डायल करने लगी, लेकिन नैना ने कॉल रिसीव ही नहीं की, तो फिर सुनैना ने उसे मैसेज करके बता दिया कि वो दोनों आ रहे हैं और फिर उसके रिप्लाई का वेट करने लगी। लेकिन कुछ देर तक रिप्लाई भी नहीं आया, तो सुनैना ने थोड़ी मायूसी से आदित्य की तरफ देखा और बोली, नैना दी तो कॉल भी रिसीव नहीं कर रही हैं और मैसेज भी पता नहीं कब देखेंगी, तो क्या करें अब हम।